الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ابدیت کا اپنی وفاداری کا غیر معمولی ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو اور اس وفاداری کو قبول فرمایا. اور اس قبولیت کا مظہر یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بہت مطیع و فرمانبردار بیٹے عطا فرمائے، پوتے عطا فرمائے، اور نبوت اور دنیاوی وجاہت اور بادشاہت، یہ دونوں انعام آپ کی اولاد کو اللہ نے عطا فرمائے. اور بنی اسرائیل نے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے انبیاء اور حکمراں پیدا ہوئے. اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کا مرتبہ بڑی انسانیت میں سب سے بلند مرتبہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہونے کی وجہ سے، ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی وہ بڑی خصوصیت کی تھی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایمان کو، عقل کو صحیح استعمال کیا اور اپنی سہم و عقل سے ایمان کو سمجھا اور توحید کو سمجھا، جس کی اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے قرآن مجید جگہ جگہ کہ جو تم دیکھ رہے ہو سارے اپنے چاروں طرف، یہ زمین آسمان اور یہ جو تمہیں جو فوائد حاصل ہے اور جو نظام چل رہا ہے زمین آسمان کا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، یہ سب تمہارے لیے علامت ہے اس بات کی کہ تم سمجھو کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے جو سب سے بڑا ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے. انبیاء تم کو سمجھاتے ہیں تو اس کے بعد تم نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خود غور کر کے اس بات کو جانا اور اس پر وہ جم گئے. صرف معلومات کے تک نہیں رکھا بلکہ اس کو انہوں نے اپنا بالکل اپنا مقصد بنا لیا اور اس کے لیے وہ اپنی قوم سے لڑ گئے. ایسے لڑ گئے کہ قوم غصہ اتنا آیا کہ قوم نے ان کو کہیں کو جلا دینا چاہیے آگ میں. اور جلا دینے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ادیان ہیں جو پہلے بھی رہے ہیں، ان میں جلانے کا مسئلہ بہت آتا ہے. اب مسلم یہ بات تھی کہ جو جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا تھا پہلے، तो एक जगह जमा कर दिया जाता था, आग आती थी आसमान से और वो उसको जला देती थी, और आग जला दे तो समझा जाता था कि अल्लाह ताला के यहाँ वो कबूल हो गया। एक मौके पर रख दिया माले गनीमत तो आग नहीं आई, नहीं जलाया। अब परेशान हुए तो नबी ने कहा कोई इसके अंदर खोट है। तहकीक की गई, मालूम हुआ उसके अंदर चोरी का एक माल था, इसलिए वो कबूल नहीं हुआ। और जला देना कबूल होने की अलामत समझा जाता था, और मजाहिब में जलाने का सिलसिला बहुत रहता था, और आग की भी इबादत करते थे लोग, शिर्क आग शिर्क भी था। तो जाहिर है कि उनकी कौम ने सोचा कि इनको जला देना चाहिए, जला देना उनके यहाँ कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। अल्लाह ताला को उनकी बात इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि तुम ठंडी हो जाओ। ये खसूसियात जो चीज़ों में पाई जाती हैं वो सब अल्लाह की पैदा की हुई खसूसियात हैं, और खसूसियात जो काम करती हैं वो अल्लाह के हुक्म से काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने खसूसियात पैदा कर दी और खसूसियात आज़ाद हैं, नहीं आज़ाद नहीं है। वो अल्लाह का इशारा, अल्लाह की तरफ से इशारा उनको मिलता है कि तुम काम करो। दवा फ़ायदा करती है उस जो अल्लाह ताला का इशारा होता है फ़ायदा करो, अल्लाह ने उसको उसमें फ़ायदा रख दिया है, और वो फ़ायदे का अमल अल्लाह के इशारे से होता है हर चीज़। और साफ साफ कुरान में आता भी है कि जो कुछ होता है, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हमारे करने से होती है। हर चीज़ हमारे उसमें अख्तियार में है और हमारे हुक्म के मुंतज़िर है। जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है वो तो बना दिया है, वो निज़ाम चलेगा लेकिन अल्लाह ताला की इजाज़त से चलेगा। जहाँ पर अल्लाह ताला चाहेगा उस निज़ाम को रोक देगा। तो आग में जो गर्मी पाई जाती है, जलाने की सलाहियत जो है ये अल्लाह ही की दीवी तो है, अल्लाह ने उसकी सलाहियत रोक दी। आग का कहा तो अब जलाने का काम तुम्हें ही करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे महफूज रहे उस आग में, और लेकिन दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि अब वहाँ वो रह नहीं सकते थे। वह वतन छोड़कर, अपना सारा माल मता छोड़कर वहाँ से निकले और जाके शाम में क़याम किया। शाम में उन्होंने जाकर वहाँ काम शुरू कर दिया, वही दावत का और लोगों की इस्लाह का और फरोदारी और इताअत और इबादत का, वो मरकज़ बन गया अल्लाह की इबादत का, वो बड़ा मरकज़ बन गया पूरे आलम में, सबसे बड़ा मरकज़ इबादत का वही बन गया, जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं क़ुद्स। वहाँ फिर वहाँ पर इबादतगाह बन गई वो, और सब उस इबादतगाह में आके इबादत करने लगे। इबादत का जो तरीक़ा पहले था उस तरीके से इबादत होती थी, नमाज का तरीक़ा थोड़ा मुख्तलिफ था। अल्लाह ताला ने कह भी दिया कि हम तुमको तुम्हारे ख़ानदान में हम इमामत रख देते हैं, यानी नबूवत और बड़ाई। लेकिन बनी इसराइल को घमंड हो गया इस बात पर कि हमको अल्लाह ने बहुत ऊँचा मर्तबा दे दिया है, हम सबसे बड़े हैं। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है, किसी का अपने को समझना कि हम कुछ हैं ये अल्लाह को पसंद नहीं आता। और शुरू ही अल्लाह ने वाकया सुना दिया शैतान का। शैतान बड़ा इबादत गुजार था, और उसको जन्नत में घूमने फिरने की और आने जाने की हर जगह, आसमानों में आने जाने की हर जगह उसको आज़ादी थी, और बहुत इबादत गुजार था। लेकिन उसने अपने को इंसान से बड़ा समझा, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इनके पीछे इनके सामने झुको, यानी इसका मतलब ये है कि तुम इनसे छोटे बनो, इनको हम तुमसे ऊंचा मर्तबा दे रहे हैं। उसने कहा कि ये मिट्टी जो बहुत हकीर चीज़ है, और हकीर अल्लाह ने उसको रखा है, मिट्टी हकीर है ही, इसका बनाया हुआ उसके सामने हम झुके, हम आग के बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने सुलाने दरगाह कर दिया, और बिल्कुल उसको किस्मत से ख़राब हो गई। उसने इस गुस्से में अल्लाह ताला से कुछ नहीं कर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनकी वजह से उसको ये उनको बहकाने की उसने कोशिश की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, भूल हो गई, अल्लाह ताला की नाराज़ी हुई, लेकिन अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब ये सिलसिला चला। तो इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, उसको यही समझना चाहिए कि हम कमतर हैं, हम कमतर हैं, और जो कुछ हमारी जो हमारी बड़ाई या हमें जो वो सब अल्लाह की दी हुई है वो हमारी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, तो हमारे इसमें क्या हम थोड़े नहीं हुए, अल्लाह बड़ा है। वो तौहीद को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अहमियत दी है, सबसे ज्यादा अहमियत दी है। और हर गुनाह माफ हो सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ हो सकता। और शिर्क जो है वो खुला हुआ शिर्क भी होता है और छुपा हुआ शिर्क भी होता है। अल्लाह ताला की किसी सेवत में किसी को शरीक करना, यानी फला आदमी हमको अच्छा कर सकता है बल्कि दवा हमको अच्छा कर सकती है, ये भी शिर्क के मिलती जुलती चीज है। अल्लाह ताला वालों को दिखा देता है कि ऐसी दवा के जो बिल्कुल हमेशा कामयाब है लेकिन नहीं असर कर रही है, अल्लाह ताला उसके असर को रोक लेता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अल्लाह ताला ने उसको बैतुल मुकद्दस को अल्लाह ताला ने मंजूर कर लिया, वो जगह जो है बहुत मोहतरम हो गई, सारी दुनिया से मोहतरम जगह जो अल्लाह ताला की नज़र में पसंदीदा हो गई वो बैतुल मुकद्दस, इसलिए सब लोग वहाँ उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस जगह को सदरा मोहतरम बनाया था, जमीन की जो जगह आसमान से ताल्लुक रखती है वो हरम शरीफ है, मक्का मुकर्रमा है। शाह साहब ने लिखा है कि चार चीजें ऐसी हैं जमीन की कि जो आसमान से उनका रब्त है, कनेक्शन है उनका, उनमें एक तो बैतुल्ला शरीफ है ये हरम शरीफ, दूसरे नमाज है, तीसरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और तो ये जगह जो है मक्के मुकर्रमा की ये गोया कि आसमान से इसका रब्त है, मुसलसल आसमान से जब रब्त है इसका मतलब आसमान से नूर आता है जाता है बराबर। बल्कि उलमा ने लिखा है कि वहाँ बैठ कर बैतुल्लाह शरीफ को देखो और अपनी निगाह को ऊपर ले जाओ और नीचे लाओ, यानी गोया के नूर के आने जाने से अपनी आंखें मिलाओ, उससे जोड़ो। तो वो जगह नूरानी जगह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ मस्जिद बनाई थी, उसके बाद वो जगह डगर आबाद हो गई तो मस्जिद भी उसी में छिप गई उसमें। तो अल्लाह ताला ने उसको ताज़ा करने का फैसला फरमाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाओ उस जगह को आबाद करो। उस जगह को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले जाकर इब्राहिम ने आबाद किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद को खुद से इख्तियार करने के जो शानदार कारनामा अंजाम दिया, जिससे वो अल्लाह ताला के बहुत महबूब हो गए, अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बना लिया, वतखज़ल्लाह इब्राहिम खलीला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित भी किया इस बात को, तीन कुर्बानियाँ उन्होंने ऐसी दी जो बिल्कुल आखिरी दर्जे की कुर्बानियाँ होती हैं। एक कुर्बानी यही कि अपने ख़ानदान को, अपने वतन को, अपने सारे कारोबार सब को छोड़कर वो अजनबी जगह जाके बच गए अल्लाह के लिए। दूसरी कुर्बानी ये ली कि अपनी बीवी और उनके लड़के को, बच्चे को जो शीर खार था ले जाके सहरा में छोड़ के चले आए अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं कहा कि क्या होगा, ये कैसे जिंदा रहेंगे, कुछ नहीं, अल्लाह के हुक्म है, फैसला खत्म। तीसरी जबकि उनका ये बेटा बड़ा हुआ और खूब दौड़ फिर करने और काम करने लगा और बड़ा नेक और बहुत साले और अपने माँ बाप का बड़ा फरमानबरदार, खुश देख कर खुशी होती थी माँ बाप को, हुक्म आया कि इसको ज़िबा कर, ज़िबा कर दिया अपने नज़दीक। ये तीनों कुर्बानियाँ ऐसी हैं कि जिनसे हर कुर्बानी नामुमकिन हद तक है। उस बेटे को भी जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो, उसको ज़िबा करने का हुक्म है। और बेटा भी ऐसा कि जब उन्होंने जिक्र किया कि हमने ख्वाब में बार बार देखा है हम तुमको ज़िबा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो हुक्म है तो आप कर दीजिए। बेटा भी ऐसा कि वो तैयार है कि हमें ज़िबा कर दीजिए आप। और शायद इसी वजह से उनको कुरान मजीद में उनके यहाँ सिफत बयान की गई सादिकुल वाद की सिफत है कि वादे के सच्चे। जाहिर है जब उन्होंने कहा हाँ आप अल्लाह का हुक्म है तो हमको ज़िबा कर दीजिए, हम तैयार हैं, ये वादा था ना। और फिर वो अपने को ज़िबा करने के लिए पेश कर दिया उन्होंने, लेट गए तो ज़िबा कर दीजिए। तीसरा सिद्क वादे की सच्चाई क्या हो सकती। तो बहरहाल अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ उस जगह को आबाद करो जिसको हमने वो कबूल कर लिया है पहले ही से। جب اللہ نے آسمان زمین بنایا ہوگا اسی وقت زمین کی اس جگہ کو اللہ نے قبول کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ کے متعلق یہ نہیں ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہو وہاں جتنا وہاں ملتا ہے, ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی کے بعد. لیکن یہی فرما دیا کہ میں یورپ سی ایم بے الحاظ میں عذاب نریم, ایسی محترم جگہ جو اللہ کی پسندیدہ ہے وہاں تم اللہ کی نافرمانی کرو گے, وہاں تم اللہ کے حکموں کے خلاف کرو گے تو ہم بھی پھر تم کو بہت سخت سزا دیں گے, بہت سخت سزا دیں گے. جہاں وہاں نیکی کرنے کی بہت اجر ہے وہاں گناہ کرنے کی سزا ہی بہت زیادہ. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکہ چھوڑ کر جا کے طائف میں بس گئے تھے کہ بھائی یہاں رہ کر احتیاط میں مشکل ہو, یہ جگہ بہت کمانے کی ہے لیکن خسرے کی بھی بہت, کہ یہاں ہم سے جو گناہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا, غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا. تو جا کے طائف میں انہوں نے قیام کیا مکہ چھوڑ کر, ڈر کے مارے کہ مکے کی عظمت اور وہاں کا جو وہ ہم سے نپ سکے گی نہیں سکے. لیکن حال کیا ہے, لوگ کمانے کے لیے مکے جاتے ہیں اور وہاں بالکل دنیا داری کے ساتھ رہتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے ہوتے, کتنی خطرناک بات. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا وہی بغوان علیہ ابراہیم مہاکال بیت, ہم نے ابراہیم کو جگہ دی بیت اللہ بنانے کی. بیت اللہ تعالیٰ اس کعبے کو اپنا بیت کہتا ہے, تو مکان البیت بیت اللہ کی جگہ دی ان کو کہ وہاں وہ قائم کریں, اس کو مرکز بنائیں. فرمایا کہ اللہ تو ٹھیک بھی سیا اتراہر بیٹھے القائمین القیسور, دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ لا تشرک بھی شایا, میرے ساتھ شرک کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جائے کہ شرک کی کوئی بات نہ ہو تو کیا مطلب ہے, کہ بہت معمولی مخفی شرک بھی نہ ہونا چاہیے, شرک کا شائبہ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے. عام انسان کا شرک تو کھلا ہوا شرک ہوتا ہے, لیکن نبی کا یوں بھی بڑے معاہد تھے, ان کو تلقین ہو رہی ہے کہ شرک دیکھو شرک نہ ہونا چاہیے. کیا مطلب کہ بڑی وہی سخت قسم کی توحید ہونی چاہیے. اور فرمایا اطاہر بیت الطائفین والقائمین والرکع السجود, اور میرے گھر کو تم صاف کرو پاک کرو. یہاں یعنی اس کو یہاں تم گھر بناؤ گے تو صرف گھر صرف بیت اللہ ہی نہ بناؤ, کعبہ ہی نہ بناؤ, بلکہ اس جگہ کو صاف ستھرا کرو, یعنی وہ ایسی گناہوں کی اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں اس سے صاف کرو اس کو, وہ خالص دینی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ بناؤ طاہر بیتیا. اور یہاں پر تاکہ لوگ آئیں اور طواف کریں اور یہاں پر رہ کر عبادت کریں, رکو کرنے اور رکو کریں سجدہ کریں, تاکہ یہاں صحیح طور پر عبادت ہو سکے, اللہ کی عبادت بالکل یکسوئی کے ساتھ ہو سکے. جو تو ہر جگہ عبادت اللہ کی جو ہے وہ پسندیدہ و مقبول ہے, لیکن یہ جگہ جو خود اللہ نے پسند کر لی, جب پسند کر لی تو عبادت کی بہترین جگہ ہو گئی. تو فرمایا کہ پاک کرو میرے اس گھر کو یعنی اس علاقے کو, اور ان لوگوں کے لیے جو آ کر طواف کریں گے اور جو کہ یہاں قیام کریں گے اور رکوع سجدہ کریں گے. واضح سے نعت بالحج, اس کے بعد پھر آواز لگاؤ آؤ لوگوں یہ مرکز ہے, یہاں آ کر عبادت کرو, یہاں آ کر اللہ کو یاد کرو, یہاں اللہ خوش ہوتا ہے بہت, یہاں کی عبادت دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے اور یہاں کی عبادت میں تم کو بہت فائدہ ہوگا. واضح سے نعت بالحج, اور حج کا تم اعلان کرو, لوگوں کو آواز دو حج کے لیے آئیں, یا تو کر اجارن والا کلامن یاتی نمن کل فجن عمیق, پھر دیکھو گے کس طرح لوگ آتے ہیں. ظاہر یہ اعلان اللہ کی طرف سے وہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پھر جو اعلان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں, اور ہر چیز اللہ کے قبضے میں اس کے اختیار میں ہے. کہ حضرت ابراہیم کے اعلان کے ساتھ گویا کہ یہ دلوں میں ڈال دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگ وہاں جائیں اور وہاں عبادت کریں. چنانچہ فرمایا یا تو کا رجال والا کل ابراہین یا تین, پھر دیکھو کہ لوگ کس طرح آئیں گے, لوگ پیدل آئیں گے और दुबली पतली उठनियों पर आएंगे, जो उठनिया के जिनसे चलना मुश्किल हो रहा है लेकिन उस पर भी लोग आएंगे। ये नहीं करेंगे कि भाई उठनी बेचारी कमजोर है, हम कैसे जाएं, हमारा जाना मुश्किल नहीं, वो लोग पहुंचेंगे बिल्कुल फिदा होते हुए वाला कुल रामिरीन। और याती ना बिल्कुल फर्ज नबी, कोई उठनिया भी ऐसे रास्तों से आएंगी जो बड़े तंग रास्ते हैं और गहरे इलाकों से होकर आएंगे, यानी बड़ी मशक्कतों के साथ लोग यहाँ पहुंचेंगे और हज करेंगे। और हकीकत भी यह है कि अब जो नए जराए निकल आए हैं उसमें बहुत फर्क हो गया, वरना अभी 50 साल तक, 60 साल पहले तक हज करना आसान नहीं था। आदमी को ऐसी मशक्कतों से गुजरना पड़ता था कि वो समझता था कि अब इसमें शायद हम बच न सकेंगे। इसलिए आम रवाज था कि हज करने वाला अपने महल्ले, अपने अज्जा महल्ले में लोगों से और अपने अज्जा से माफी मांगता था, हर एक के पास जाता था, देखिए हम हज को जा रहे हैं, हमसे आप कोई हमारी हकदल्फी हमने की हो, आपके साथ कोई ज्यादती की हो तो माफ कर दीजिए इसलिए क़यामत में, ताकि मुआवजा ना हो। इसलिए कि अब वापस आने का मशकूक है, बस ऐसे पुरमशक्कत सफर से वापस आना आसान नहीं, बड़ी मशक्कतों के साथ लोगों का सफर होता था। फिर वहां खुद वहां जाकर बड़ी मशक्कतें होती थी, वहां के इलाका का मुसत्ता तो है नहीं ऐसे जैसे हिंदुस्तान या ये हमारे इस इलाके का, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं और खंदकें हैं और वहां की मिट्टी भी खुश्क है, रेतीले मैदान है, पानी नहीं मिलता, बड़े बड़े दूर दूर फासलों तक पानी नहीं मिलता। इसीलिए गलत रास्ते पर आदमी चला जाए तो फिर प्यास के मारे उसकी जान चली जाती है, तो पानी मिलता नहीं। तो इन सब मशक्कतों से लोग गुजरते थे, तो यहाँ के देखना कैसे कैसे तंग रास्तों से और कैसी कैसी मुश्किलात से गुजर कर लोग आएंगे और आएंगे, यानी ऐसी कशिश पैदा हमने कर दी है कि लोग खुद ब खुद आएंगे। तुम ऐलान कर दो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, पहाड़ पर से वो आवाज उनकी दिलों तक पहुंच गई, या तू कर जाने वाला कुल लजामी जाती ना बिल्कुल फर्ज नबी, गहरी घाटियों से गुजर के आएंगी और ऐसी उठनियां जो चलते चलते दुबली हो गई हैं और कमजोर हो गई हैं। फरमाया कि ले सिद्ध मुनाफे आलम, ताकि यहाँ आकर अपने नफे की चीजें देखें, वो यहाँ आकर मुशाहदा करेंगे कि उनको कैसा नफा होता है, मुनाफे यहाँ मिलेंगे उनको, नफा असल यहाँ होगा, उनको आकर देखेंगे कैसे कैसे उनको नफे हासिल होते हैं, यानी अल्लाह ताला के यहाँ कैसी मकबूलियत हासिल होगी, कैसी कैसी इबादत करेंगे, वहाँ तिलावत करेंगे, वहाँ तवाफ करेंगे, वहाँ वो उसके उम्र हज के आदाब अलग करेंगे, जिससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए आमतौर पर हज करने वाले की जिंदगी बदल जाया करती थी, जिंदगी जाने से पहले वो दुनियादार होता था, लेकिन हज में होकर जब आता था तो वो दीनदार हो चुका होता था, और लोग समझ के जाते थे कि अल्लाह चाहेगा तो वापस आएंगे और नहीं चाहेगा तो हमें इन मशक्कतों के साथ वहीं रह जाना होगा। फरमाया कि आके देखें उनको, अपने नफे को देखें, वो यस्कुरुस अल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, और ये मुतय्यना दिनों में अल्लाह का नाम लें, हर दिन हर मौके पर अल्लाह का नाम लेना है, लेकिन इन खास दिनों में अल्लाह का नाम लें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और दिनों में अल्लाह का नाम लेंगे तो उसी हिसाब से होगा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। लेकिन यहाँ के लिए अल्लाह ने बेहद मकबूलियत रखी है, यहाँ आकर वो अल्लाह का नाम लें और जिक्र करें, अल्लाह इस खासतौर पर इस बात पर कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे जानवर अता फरमाए, चौपाए अता फरमाए, ये यहाँ हमारे मुतमद्दन इलाकों में जहाँ तमद्दन है वहाँ ये बात अजीब मालूम होगी कि जानवरों को होना किसी कौन अहम बात है, जानवर हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, जानवर पालना कोई ऐसी खास बात नहीं है, नहीं ये तो मुतमद्दन इलाके हैं, यहाँ मशीनें वगैरह हैं, लेकिन आमतौर से दुनिया में जो असल दौलत होती थी, सरमाया होता था, वो जानवर होते थे, यानी आदमी को जिंदगी गुजारने के जो वसाइल थे, जैसे आजकल पैसा होता है, नोट होता है और रकम होती है, तो उस जमाने में आमतौर पर जानवरों को ऐसे ही काम लिया जाता था, और लोग दौलतमंद लोग उसी हिसाब से जानवर रखते थे, सैकड़ों जानवर पल्ले होते थे लोगों के पास और उसको चराते थे, खुददाम चराते थे, वही उनकी दौलत होती थी, उसी से बाद वक्त वो अशिया हासिल करते थे और वही मुख्तलिफ मौके वो जानवर इस्तेमाल होते थे। तो जानवर की अहमियत भी बहुत थी और उसकी बहुत कीमती समझा जाता था। तो जानवर ज़बह करने वाला बोला कि बड़ी कुर्बानी देता था, अपने खाने के लिए ज़बह करता था वो तो कोई कुर्बानी नहीं है, वो तो उसको जरूरत है, जरूरत पर बड़ी से बड़ी रकम आदमी सर्व कर देता है, लेकिन खालिस अल्लाह के लिए जिसमें कोई दुनियावी नफा नहीं है आदमी रकम खर्च करे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग ज़कात तो पूरी तरह अदा नहीं करते, अपनी कीमती माल अल्लाह के लिए अपनी दौलत सर्व कर दे और कोई दुनियावी उससे मनफात न हो, बहुत मुश्किल काम। इसलिए उस जमाने में अल्लाह के लिए जानवर को ज़बह करना अल्लाह के खातिर ये बाअमल समझा जाता था। और जो सबका कौमें थी उनमें बहुत रवाज था जानवरों को ज़बह करने का, फिर उसमें शिर्क चलता था, यानी अपने पीर के नाम पर जैसे आजकल भी होता है, अपने किसी अपने बुत के नाम पर जानवरों को ज़बह कर रहे हैं खुश करने के लिए, समझते हैं कि बुत खुश हो जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो जानवरों को अपने बुतों के नाम पर भी ज़बह करते थे, वो खालिस वही दुनियावी गरज के लिए कि हम बुत खुश हो जाएंगे हमारा फायदा हो जाएगा। तो खालिस अल्लाह के लिए जानवर की ज़बह करना ये बहुत मुश्किल काम समझा जाता था, इसमें लोग जी नहीं लगते रहे थे, कोई नफ़ा नहीं, कोई ज़ाहरी नफ़ा नहीं। फरमाया कि तुमको अल्लाह ने कितने जानवरों के तुम्हारे लिए कितना इंतज़ाम फरमाया है कि तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक जानवर हैं दुनिया में, जैसी जैसी तुम्हारी ज़रूरत है उसी के मुताबिक हमने जानवर पैदा किए हैं। तो ये जान इस पर शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी दौलत दी है जानवरों की शक्ल में, तो इनको तुम अल्लाह के खातिर इनको कुर्बान करो, और कुर्बान करने के बाद कुलू मिन्हा वाकिमुल बाइस अल फकीर, खुद भी खाओ और गरीबों को बेचारे बेचारे को जहाँ से कोई जिसका कोई इंतजाम नहीं है और गरीब है उसको भी खिलाओ। इस हुक्म से पहले इस्लाम से पहले जो जानवर जो कुर्बानी की जाती थी खुदा के लिए वो कुर्बानी करने वाला नहीं खा सकता था, वो बुतों के हवाले कर दिया जाता था, कुर्बानी करने वाला गोश्त नहीं खा सकता था। ये इस्लाम में इसकी इजाज़त मिली कि तुम भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ, अल्लाह के लिए ज़बह करो और खुद भी खाओ लेकिन अल्लाह के लिए ज़बह करो, इसमें कोई नस्ल को शरीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो गंदगी उनको लग गई है मैले कुचैले हैं, इसलिए कि अहराम में आदमी को नहाना और इत्र लगाना और सफाई करना मना है, तो वो दिन गुजरते हैं इसी अहराम में, जो दिन गुजरते हैं उसमें आदमी बहुत दिन हो जाते हैं नहाए हुए अपने को संवारे हुए, और वहाँ जब जाकर उसने यहाँ कुर्बानी की बस अब वो हलाल हो गया उसके लिए, अब वो अपने नहाएगा भी अपनी सफाई भी करेगा और कपड़े पहन लेगा और उसको सारी बात तो अपनी गंदगी को फिर दूर करें और जो नजरें उन्होंने मानी हैं और जो अल्लाह ताला से वादे किए हैं कि अल्लाह अगर हमको वहाँ हाजिरी का मौका देगा तो हम ये करेंगे और हमको, तो अब वो पूरे करें बैत-ए-अतीक और बैत-ए-अतीक का उस पुराने घर का तवाफ करें। बैत-ए-अतीक यानी पुराना घर, जाहिर पहला घर हज़रत आदम ने अल्लाह के लिए बनाया था इबादत के लिए, तो सबसे पुराना घर है। ज़ालिक हुरमातिल्लाह, और बात यह है, ये बातें सुनकर समझ लो कि जो भी अल्लाह ताला के मोहतरम चीज़ों की तज़ीम करेगा उसके लिए वह खैरुन लहू इंद रब्बिही, ये उसके लिए बेहतर होगा उसके रब के यहाँ, अल्लाह ताला के यहाँ, यानी उसको मकबूलियत मिलेगी। जो अल्लाह ताला की मोहतरम चीज़ों का यानी बैतुल्लाह शरीफ का और उस इलाके का जहाँ ये सब है उसका जो एहतराम करेगा, वहाँ का लिहाज करेगा कि वहाँ कोई गलत काम न करे, कोई गुनाह का काम न करे, वहाँ एहतराम में फर्क ना आए, तो अल्लाह ताला के ये उसके लिए बहुत बेहतर होगा। इतना इशारा अल्लाह ने दे दिया कि बहुत बेहतर होगा। जाहिर अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि हमारे यहाँ ये बेहतर होगा, तो इसका मतलब है कि आदमी कहीं से कहीं तरक्की कर जाएगा। वही लकमला नाम अल्लाम, और देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये जानवर हलाल किए हैं। ये सारे जानवर जो पैदा किए हैं ये यूं ही नहीं पैदा कर दिए, बल्कि तुम्हारे लिए इनको जायज़ किया है, सिर्फ कुछ जानवरों को नाजायज किया है। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उन जानवरों के जिनको तुम्हारे कुरान मजीद में जिनका तज़किरा बयान कर दिया गया है, बस ये है कि तुम गंदगी से बचो। ये मैल कुचैल जो है इंसान, ये जिंदगी के और दुनियावी जिंदगी के जो मैल कुचैल हैं, गुनाह के जो मैल हैं और जो और अखलाकी मैल कुचैल हैं और ज़ाहिरी मैल कुचैल हैं, इन सब से बचो। अपने को साफ सुथरा रखो, पाकीदा रखो। वैसे न वो कौल दूर, और लोगों धोखेबाजी वाली बातों से बचो, झूठ बोलने से बचो। यानी ये काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, लेकिन अंदर कोई गलत स्थिति हुई, कह रहे हैं अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं अल्लाह के लिए, लेकिन उसमें कोई गलत है, कोई फायदा है, यूँ नहीं देंगे। तो आके और दूर झूठ झूठ भरे से कहने से बचो, झूठी बात मत कहो। अगर अल्लाह के लिए कर रहे हो तो अल्लाह ही के लिए करो, फिर उसके अंदर कोई झूठ ना बोलो। और अक्सर ये होता है, वाकई ये खता होती है इंसान से, कि नेक काम हम उसके साथ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत से नेक कामों में छिपा हुआ होता है अपना मतलब, अपनी गलत छिपी हुई होती है। तो गया झूठ बोल रहा है, यानी कर रहा है अपने फायदे के लिए, कह रहा है कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। वह शने वो कौल दूर, और धोखे की बात से बचो, धोखे वाली बात मत करो। हुनफा लिल्लाह, खालिस अल्लाह के लिए हो जाओ, अपने को अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए कर लो, हर एक से काट कर अपने को अल्लाह से जोड़ो और दूसरे से अपने को काट लो। ये मिक्स तरीका ठीक नहीं है कि अपनी गरज में छिपी हुई है और कह रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन अंदर कोई और फायदा छिपा हुआ है। तो निकट कर अल्लाह के हो जाओ, हुनफा लिल्लाह, खालिस अल्लाह के बन जाओ, गैर मुशरिकी ने भी उसके साथ किसी को शरीक न करो। यानी कोई उसकी सिफात में और उसकी बड़ाई में किसी को शरीक न करो, किसी और को ऐसा न समझो जैसे अल्लाह ताला है। किसी भी सिफत में फरमाया वही शिरक बिल्लाह तो काना खरा मिनसरमाए तब फतः सबू तैरो मकान सही। जो भी अल्लाह के साथ शिरक करता है, किसी बात को शरीक कर देता है अल्लाह की सिफत में और अल्लाह के साथ, तो वो बिल्कुल समझो कि बेसहारा हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को आप फिजा में फेंक दें, उसमें कोई वजन न हो तो हवा उसको उड़ा के इधर से उधर ले जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं। या वो अगर भारी चीज़ है गिरेगी जमीन के ऊपर, और जानवर या कोई हो जमीन से गिरेगा मर के, तो क्या है उस पर लोग खाने के लिए जानवर आ जाएंगे उसको खाएंगे। कि जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, ऐसी मिसाल है जैसे कि गिरा हो आसमान से गिरा हो, ऊपर फिजा में किसी ने फेंक दिया हो, ऊपर से गिरा हो और उसको चिड़िया उसको उचक ले जाए। जैसे चिड़िया कोई खाने की चीज़ होती है, चिड़िया फौरन उस पर झपट्टा मार के छीन लेती है। इस तरह शयातीन तुमको खा लेंगे। शिर्क करने वाले का कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई सहारा नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं तो फिर कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई चीज़ हो जिसको फेंक दिया जाए आसमान की तरफ और वहाँ से वो गिरे तो कोई उसको कई चिड़िया खा लेगी या उस पर हवा में उड़ जाएगी वो चीज़, कोई उसको सहारा नहीं। और चाहे वही रही हो या उसको हवा लेकर गिरेगी बहुत दूर किसी जगह, यानी जहाँ की वो चीज़ है वहाँ भी नहीं गिरेगी, हवा उसको उड़ा ले जाएगी कहीं जाकर, कहीं किसी खंडक में, कहीं दरिया में किसी मैदान में जाकर छोड़ा है, उसे गिरा देगी। ये मैंने यानी फरमाया कि मुशरिक का कोई सहारा नहीं, ये दुनियाई तौर पर वो जो कुछ समझता हो करता हो अल्लाह के यहाँ उसका कोई सहारा नहीं। उसकी हैसियत ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई चीज बिल्कुल बेसहारा हो, कोई बचाने वाला ना हो, वो आंधी की नजर हो जाए। ذَلِكَ مَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، और इसके साथ ये समझ लो कि जो भी अल्लाह ताला के शायर यानी अल्लाह ताला की कुर्बत रखने वाली चीज़ें हैं, शायरा कहते हैं जो कुर्बत रखने वाली चीज़ हो, अल्लाह ताला के कुर्बत रखने वाली चीज़ों की जो भी ताज़ीम करेगा, अल्लाह की बातों का अल्लाह की चीज़ों का जो भी ताज़ीम करेगा, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، दिलों का तकवा यही है, वही करेगा जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, दिल में अल्लाह की इताअत होगी, तब वो करेगा, शिर्क से बचेगा। और अगर दिल में अल्लाह ताला की पूरी मोहब्बत नहीं है तो अपनी अपना नफा अपना फायदा भी देखेगा, वो काम करेगा जिसमें अपना फायदा भी है और अल्लाह ताला की उनकी तावील भी है। लेकिन दिल अगर दिल में तकवा है तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा कि जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क का कोई मामला नहीं करेगा। फरमाया लकुम फिया मुनाफिउ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा महिल्लुहा इला अल्लाति अतीक, ये जानवर तुम ले जाते हो कुर्बानी के लिए हज में, पहले रवाज था हजी का, यानी जानवर अपने घर से लेकर आदमी चलता था, इसलिए वहाँ मक्के मुकर्रम कहाँ जानवर मिलेंगे, उस जमाने में मिलते नहीं थे, तो आदमी अपने घर से सारा सामान लेके चलता था, खाने पीने का सामान और जानवर ज़बह करने के लिए घर से ले जाता था, वो हदी कहलाते थे, उन पर निशान बना दिया जाता था। और रवाज था कि हदी के जानवर कोई छेड़ता नहीं था, ये अल्लाह के लिए जानवर तय हो गया है, अल्लाह के लिए इसकी कुर्बानी होनी, इसमें कोई शख्स दखल न दे, तो लोग एहतराम करते थे हदी कुर्बानी के जानवरों के साथ कोई सलूक ही नहीं करते थे। फरमाया कि ये देखो लकुम फिया मुनाफिउ इला अजलिन मुसम्मा, इन जानवरों में ये हदी के जानवर हैं, तुम इनसे फ़ायदा उठाते हो एक ख़ास मुद्दत तक, उसके बाद ले जाके अल्लाह ताला के अल्लाह के चौखट पर उनको तुम कुर्बान कर देते हो। सुम्मा महिल्लुहा, फिर उनका गिरना कहाँ होता है, बैत अतीक़ में, फिर हरम में ले जाकर तुम वहाँ मक्के मुकर्रम ले जाकर उनको पछाड़ देते हो और अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हो। लकुम फिया मुनाफिउ इला अजलिन मुसम्मा, तुम्हारे लिए इन्हें बहुत नफ़े हैं, इन जानवरों में इनसे बहुत तुम फ़ायदा उठाते हो, लेकिन एक ख़ास मुद्दत तक, ये हदी के जानवर, फिर उनका कुर्बान कर देना, उनका गिराना बैठ अतीक़ पर होता है।